ध्रुव और तारा मौलिक के घर पर पगफेरे की डिनर के लिए आए हुए थे। ध्रुव और तारा के बीच नोकझोंक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। पहले तारा ध्रुव की इस बात पर नाराज हो गई जब ध्रुव ने कहा कि उसे डीसेंट लड़कियां पसंद है और तारा उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से फिट नहीं बैठती है। तो वहीं ध्रुव को इस बात का बुरा लगा जब तारा ने कहा कि वो ये मिशन और बाकी चीज़ें जल्द से जल्द खत्म करना चाहती है ताकि उसका ध्रुव से पीछा छूट जाए। ध्रुव ने गुस्से में आकर खाना तक नहीं खाया था और वो बाहर गाड़ी के बोनट पर बैठकर स्मोकिंग कर रहा था। इस बीच मौलिक के फोर्स करने पर तारा ध्रुव को बुलाने के लिए बाहर आने लगी। जब उसने ध्रुव को स्मोकिंग करते देखा तो वो एक पल के लिए हैरान हो गई। वो पिछले कुछ महीनों से ध्रुव के साथ थी, उसने कभी उसे सिगरेट पीते या फिर कोई दूसरा नशा करते हुए नहीं देखा था। तारा जल्दी से ध्रुव के पास गई और उसके हाथ से सिगरेट छीनकर जमीन पर गिरा दी। उसने उसे पैर से कुचला और फिर ध्रुव की तरफ घूरते हुए देखकर कहा, खुद को हर्ट करने और बीमार होने का इतना ही शौक चढ़ा है तो और भी दूसरे तरीके हैं, इस तरह धीरे धीरे मरने से कुछ नहीं होगा। तारा ध्रुव के बिल्कुल करीब थी और उनके बीच बस कुछ इंच का फासला था। वे दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर चुनौती भरी निगाहों से देख रहे थे। मेरी फिक्र करने की जरूरत तुम्हें नहीं है, मैं चाहे सिगरेट पीऊं या ड्रग्स लूं, अपने काम से मतलब रखो, ध्रुव ने सिर हिलाकर जवाब दिया। तारा के मना करने के बावजूद उसे चैलेंज करते हुए ध्रुव ने दूसरी सिगरेट जलाई और जानबूझकर उसका कष्ट लेते हुए धुआं तारा के मुंह पर छोड़ दिया था। उसकी इस हरकत पर तारा को बहुत गुस्सा आया। वो गाड़ी के अंदर जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई थी और गाड़ी स्टार्ट करने लगी। ध्रुव जल्दी से बोनेट से नीचे कूदा। उसने तारा की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, पागल हो गई हो क्या? ये क्या हरकत है? मैं घर जा रही हूँ। जब डैड को होश आएगा तब मैं उन्हें यही कहने वाली हूँ कि मैं मिस्टर मल्होत्रा के घर पर आई थी और उनकी बात मानते हुए खाना भी खाया था, लेकिन उनके बेटे में कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड है। मिस्टर मल्होत्रा मुझे अकेले मैप नहीं देना चाहते थे और तुम अंदर आने के लिए तैयार नहीं थे, इस वजह से मुझे बिना मैप लिए ही वापस आना पड़ा, तारा ने बेपरवाह लहजे में जवाब दिया। लेकिन ये कब हुआ? उसकी झूठी कहानी सुनकर ध्रुव चिढ़ते हुए बोला, मुझे नहीं पता कब हुआ, मैं तो यही कहानी बताने वाली हूँ। मुझे नहीं लगता कि इस बार मिस्टर मल्होत्रा मुझे नाराज करते हुए मेरा साथ देने से इनकार करेंगे, तारा ने सिर हिलाकर जवाब दिया। ठीक है, मैं अंदर चलने के लिए तैयार हूँ, ध्रुव जल्दी से बोला, लेकिन अब मैं नहीं हूँ, गाड़ी में बैठना है तो बैठो वरना अकेले आ जाना, तारा ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर ध्रुव को आखिरी मौका देते हुए कहा। ध्रुव को अच्छे से पता था कि अगर वो मैप्स लेकर युग के पास नहीं पहुंचा तो युग इस बात पर गुस्सा करने वाला है। मजबूरन वो गाड़ी के अंदर आकर बैठ तो गया था। अंदर आते ही उसने तारा के दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया था और पैरों से गाड़ी रोकने की कोशिश करने लगा। क्या कर रहे हो ध्रुव राणा, अब तो तुम सच में पागल हो गए हो, तारा ने चिढ़ते हुए कहा, क्योंकि गाड़ी रोकने के चक्कर में और उसे काबू करने के लिए ध्रुव उसके कुछ ज्यादा ही करीब आ गया था। अपना मुंह बंद रखो, तुम जैसे लोगों को ऐसे ही हैंडल किया जा सकता है, ध्रुव ने जवाब दिया और उसने गाड़ी रोक दी थी। फिर उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और तारा को खींचते हुए बाहर निकाला। वहीं उनके वापस न आने पर मौलिक को उनकी फिक्र होने लगी। वो देखने के लिए नीचे आए तो उन्होंने देखा कि तारा और ध्रुव के बीच में एक जंग सी छिड़ी हुई है। जहां अंदर न जाने के लिए तारा ने दरवाजे को कसकर पकड़ रखा था तो वहीं ध्रुव उसने अंदर की तरफ खींच रहा था। तुम चाहे जो भी कर लो, मैं नहीं जाने वाली, तारा ने कसमसाते हुए कहा, और तुम्हें तो मैं ले जाकर रहूंगा, तुम्हें पता भी है तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मुझे कितना सफर करना पड़ता है, ध्रुव ने चिढ़कर कहा। इस बीच उसकी नजर मौलिक पर पड़ी जो हाथ बांधकर उन दोनों को घूर कर देख रहे थे। मौलिक ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों उन तीनों पड़ावों पर जाने के लायक हो, तारा तुम इतनी मैच्योर नहीं थी और ध्रुव तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारी समझदारी और इंटेलिजेंस देखकर मुझे हमेशा तुम पर नाज होता था और अब तुम बच्चों की तरह लड़ रहे हो, मौलिक के डांटते ही वे दोनों उनके सामने सीधे खड़े हो गए थे। मौलिक अंदर जाने लगे तभी ध्रुव और तारा बिना किसी बहस के उनके पीछे पीछे आ रहे थे। इस बार उन दोनों ने किसी तरह की कोई लड़ाई या बहस नहीं की। ऊपर स्टडी रूम में आते ही मौलिक ने एक बड़ा सा मैप खोलकर उनके सामने रख दिया था जिसमें सभी 10 पड़ावों को मार्क किया गया था। माफिया की दुनिया में 7 पड़ाव सबसे ज्यादा कीमती माने जाते हैं और जिनके पास वे होते हैं वही इस दुनिया का किंग होता है। ये पहले से ही राणा फैमिली के पास है और मुझे नहीं लगता ध्रुव की मुझे इस बारे में तुम्हें बताने की जरूरत है। एक वक्त ऐसा था जब सब कुछ सिंघानिया फैमिली का था और युग ने माफिया किंग बनने की चाहत को पूरा करने के लिए इसे हासिल किया, मौलिक ने उन्हें समझाते हुए कहा और फिर उन 7 पड़ावों की तरफ इशारा किया। उनकी लोकेशन देखकर ही तारा समझ सकती थी कि वे काफी खतरनाक जगहों पर बने हुए थे और उन्हें हासिल करने में युग ने कितनी मेहनत की होगी, कई बार तो उसकी जान तक खतरे में आ गई थी। जब पहले से ही इतना सब कुछ है तो और क्यों चाहिए तुम लोगों को, तारा ने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, और वैसे भी ये 3 पड़ाव ही हैं, जैसे कि मिस्टर मल्होत्रा ने कहा कि वे 7 पड़ाव ज्यादा मायने रखते हैं, इनकी कोई अहमियत नहीं है तो फिर तुम इन्हें भूल क्यों नहीं जाते, तुम्हें किसने कहा कि इनकी कीमत नहीं है, ध्रुव ने जवाब में कहा। ध्रुव ठीक कह रहा है तारा, मौलिक उसे समझाते हुए बोले, ये 3 पड़ाव काफी कीमती हैं और इनके बिना वे 7 पड़ाव अधूरे हैं, कोई भी इन 3 पड़ावों के दम पर माफिया किंग की पोजीशन को चुनौती दे सकता है, तारा ने मौलिक की बात पर सिर हिलाया। मौलिक ने फिर मैप की तरफ इशारा किया और कहा, इसमें सिर्फ वे 3 जगह मार्क की गई हैं, जब मुझे इनकी जिम्मेदारी मिली तब मैंने उन्हें ढूंढने के बारे में भी सोचा था और इसलिए मैंने उन जगहों को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था, इस हिसाब से मैंने अपने खुद के मैप बनाए, हालांकि वे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है लेकिन फिर भी तुम लोगों को उन्हें ढूंढना होगा, उन्हें सब बताने के बाद मौलिक ने उनके सामने और 3 मैप्स रख दिए थे। उन्होंने उनकी तरफ इशारा किया और कहा, तुम दोनों को हर एक पड़ाव सीक्वेंस से पार करने होंगे, पहला पड़ाव इंडोनेशिया में है, दूसरा राजस्थान में और तीसरा इसराइल के जंगलों में।
राजस्थान में दो पड़ाव हैं। जब मिस्टर राणा पहले पड़ाव पर गए थे तो उन्हें तभी दोनों पड़ाव अपने बना लेने चाहिए थे। अचानक तारा के मुंह से निकला, क्योंकि वो मैप की तरफ देख रही थी, जिसमें पहला पड़ाव जैसलमेर पर मार्क किया गया था। तब उनके बारे में कोई नहीं जानता था, ध्रुव ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा। उन दोनों को सब समझाने के बाद मौलिक ने मैप्स उनके हाथ में सौंप दिए थे। हालांकि वहां तक पहुंचना काफी खतरनाक था, लेकिन फिर भी उन्होंने उन्हें गुड लक विश करते हुए कहा, उम्मीद है तुम दोनों युगराना की उम्मीदों पर खरे उतरोगे। हाँ, मेरी भी कोशिश है कि मैं जिंदा वापस लौट सकूं, ध्रुव ने सिर हिलाकर कहा, जिस पर तारा आंखें फाड़कर उसकी तरफ देखने लगी। क्या मतलब जिंदा वापस लौट सको? क्या यहाँ जान जाने का खतरा है? तारा ने जल्दी से कहा। हाँ, तो कोई हमारे लिए वहाँ आरती की थाली लेकर नहीं बैठा जो इस बात का इंतजार कर रहा होगा कि हम वहाँ पहुंचेंगे और हमारे हाथ में सारी एसेट्स आराम से दे देगा। हमें उनसे लड़ना पड़ेगा, और क्या पता उन्हें सिक्योर करने के लिए ह्यूमन सिक्योरिटी के बजाय आर्टिफिशियल सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया हो, ध्रुव ने जवाब दिया।
तारा उसकी बात को समझ रही थी, तभी ध्रुव ने उसका मजाक बनाते हुए आगे कहा, तुम सीक्रेट एजेंट बनने के लिए ट्रेनिंग ले रही थी ना? अच्छा हुआ सब कुछ बीच में रह गया, वरना तुम पहले दिन ही अपनी जान गंवा देती। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम मुझे नहीं पकड़ पाए थे, तारा ने उसे घूरते हुए कहा। वो इसीलिए क्योंकि तुमने अपनी तरफ से कोई स्टेप उठाया ही नहीं था, तुम बस मेरे घर पर नॉर्मल तरीके से रह रही थी, ध्रुव ने जवाब दिया, और इसी के साथ वहां एक सन्नाटा छा गया था। ध्रुव अक्सर तारा पर यही इल्जाम लगाता रहता था कि वो उसको धोखा देने के लिए हमेशा से उसके पास थी, जबकि सच वो अच्छे से जानता था, और बातों ही बातों में उसके मुंह से निकल भी गया था। मौलिक ने उन दोनों को अकेले छोड़ना सही समझा, वो उन दोनों को स्टडी रूम में छोड़कर चले गए थे। मतलब तुम ये सच जानते थे? तारा ने अविश्वास भरे भाव से कहा। तुम्हें ये भी पता था कि मैंने कृषा को जानबूझकर शूट नहीं किया, मुझे दक्ष ने टारगेट किया था, फिर भी तुम मुझसे नफरत करते हो? तारा की आंखों में नमी उतर आई थी। ध्रुव उसका सच जानते हुए भी उसके साथ काफी बेरुखी से बर्ताव कर रहा था, और हर चीज के लिए उसे दोष देता रहता था। हाँ, क्योंकि ये सच मुझे तुम्हारी तरफ से नहीं किसी और की वजह से पता चला था। तुम आकर बताती तो मैं माफ कर देता, लेकिन तुमने मेरे इमोशंस के साथ खेला है और मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, ध्रुव ने जवाब दिया और फिर वहां से बाहर जाने लगा। तारा अभी तक वहीं पर खड़ी हुई थी। उसने अपनी आंसू साफ किए और भारी आवाज में कहा, कौन सा तुम मुझसे प्यार करते थे जो तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है? जिसे प्यार होता है वो एक बार में मर नहीं जाता है, तुम्हें खुद का क्यों नहीं दिखता है? तुम अपने सेल्फिश रीजन से मेरे साथ में हो और अभी भी ऐसे जताते हो जैसे मैंने न जाने तुम्हारे साथ क्या कर दिया। तारा पैर पटकते हुए ध्रुव के पीछे आ रही थी, और इस बार उसने ध्रुव के हाथ से गाड़ी की चाबी छीनकर खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गई थी। आखिरी बार उन दोनों के बीच जो भी बहस हुई थी उसके बाद से ही दोनों के बीच खामोशी छाई हुई थी। इस बीच ध्रुव ने महसूस किया कि तारा गाड़ी को ना तो हॉस्पिटल की तरफ ले जा रही थी और ना ही उनके घर की तरफ, वो किसी और ही डायरेक्शन में जा रही थी। कहाँ जा रही हो तुम? ध्रुव ने जल्दी से पूछा। अपने घर जा रही हूँ और अपना सामान लेकर आऊंगी, मुझे उन कपड़ों को नहीं पहनना जो किसी वक्त में किसी दूसरे के लिए थे, और सच कहूँ तो तुम्हारे साथ रहने में भी मुझे घुटन होती है। तुम अपना काम हो जाने के बाद मेहर से शादी करने वाले हो ना, तो उसी के साथ टाइम बिताया करो, जब जरूरत हो तभी मेरे पास आना, आगे से अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना, तारा ने दांत पीसते हुए गुस्से में कहा। अब आधी रात को तो मेहर को बुला नहीं सकता ना, तो तुम्हें ही झेलना पड़ेगा, जो भी लेना है जल्दी लो, मुझे मलिक अंकल का मैसेज आया है, डैड को होश आ गया है, ध्रुव ने जवाब दिया और तुरंत अपनी नजरें तारा से फेर ली थी। ध्रुव तारा से कितनी भी बेरुखी से बात क्यों ना करे, लेकिन अब वो खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा था, जैसे तारा के घर के हर एक रास्ते को अपने जहन में बिठा लेना चाहता हो। आज पहली बार तारा खुद से जुड़ी किसी चीज के बारे में ध्रुव को आगे बढ़कर बता रही थी और उसे वहां लेकर जा रही थी। जहां एक तरफ तारा ध्रुव को लेकर अपने घर जा रही थी, तो कोई पहले से उसका वहां आने का इंतजार कर रहा था। कौन है, क्या लगता है, कोई खतरा या सरप्राइज? चलिए अगले पार्ट पर पता चल जाएगा, तो पढ़कर समीक्षा कर दीजिए।